हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 186। हर्षिता उस बार में पहुंची जिसका पता उस आदमी ने उसे मैसेज किया था। वो जगह काफी महंगी और हाई क्लास थी, ऐसी जगह जहां हर्षिता पहले कभी नहीं गई थी। हालांकि ये एक डिस्को और डांस बार था जो रात में गुलजार रहता था, इस वक्त वहां सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो इतना खूबसूरत और अच्छा बना हुआ था कि हर्षिता अंदर जाने से पहले हिचकिचा रही थी। क्या करूं, जाऊं या नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे यहाँ आने से पहले, अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही। ये सोचते हुए हर्षिता एंट्री गेट के पास खड़ी थी। उसने अपनी कार सड़क के दूसरे किनारे पर रुकवाई थी और खुद अकेले ही यहाँ आई थी। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अंदर जाकर देख भी लेती हूँ। पता नहीं क्या करता है ये रुद्र, और पता नहीं कौन से दोस्तों के साथ आया था जो उसे यहाँ छोड़कर चले गए। ये सब बड़बड़ाते हुए हर्षिता अंदर आई। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, जीन्स और वाइट कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप। वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती थी। गेट से अंदर आते ही दो लड़के उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। वे दोनों काफी नशे में लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। लेकिन हर्षिता को अंदर आता देख वे दोनों रुक गए। अपनी जगह पर ही रुक गए, दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता लगभग बंद करके। उनकी हरकत का मतलब हर्षिता को साफ समझ में आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अकेली थी और पहले ही रुद्र को देखने आई थी, जो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से होश में नहीं था, इसलिए वो और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। उन लोगों को अवॉइड करते हुए वो किसी तरह साइड के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी दूसरे लड़के ने उस तरफ आकर हर्षिता के सामने हाथ रख दिया, उस जगह को भी बंद करके। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितने पैसे लोगी? हम दो लोग हैं। ये बात उसने हर्षिता की तरफ बहुत ही लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कही। हर्षिता इस बात का मतलब अच्छी तरह समझती थी। उसने तुरंत ही उस लड़के का हाथ अपने सामने से हटाते हुए कहा, क्या बकवास है ये, हटो मेरे रास्ते से। अरे दिन का वक्त है तो नखरे दिखा रही है, चल तू ज्यादा पैसे ले लेना, दूसरे लड़के ने भी वहां आते हुए कहा। हर्षिता ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बांधी और आंखें बंद करते हुए बोली, देखो तुम दोनों मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से चुपचाप। अच्छा वो नहीं हो तो फिर क्या हो, खुद ही बता दो। लेकिन हमें तो पसंद आ गई हो इसलिए सीधी तरह से पूछ रहे हैं, नहीं तो उठाकर भी लेकर जा सकते हैं, उस लड़के ने लगभग धमकी देते हुए कहा। हर्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने झट से अपने सामने वाले लड़के का हाथ हटाया और तुरंत ही वहां से अंदर चली गई। वो उनकी बात सुनकर उन लोगों से नहीं उलझना चाहती थी और ना ही बहस करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो। जैसे ही हर्षिता अंदर की तरफ भागी वे दोनों लड़के भी उसके पीछे आ गए, लेकिन हर्षिता सीधे बार काउंटर की तरफ भागी जहां कुछ लोग थे। उनमें से एक के पीछे आकर खड़ी होती हुई बोली, हेल्प मी, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जबरदस्ती साथ चलने को बोल रहे हैं, यहां मैं अपने दोस्त के लिए आई हूं और ये लोग। हर्षिता की आवाज सुनकर वहां मौजूद बारटेंडर और जो लोग वहां काम कर रहे थे उन्होंने हर्षिता की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और बाकी उन दोनों लड़कों को भी वहां आते हुए देखा। क्या है मैडम, क्यों नखरे कर रही हो, दिन का टाइम है इसलिए क्या, वैसे अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो इस टाइम यहां पर टहलना ही नहीं चाहिए था, लोग तो वही समझेंगे, उस बारटेंडर ने भी एकदम टकासा जवाब दे दिया। हर्षिता का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर आकर कैसे फंस गई है और क्या सच में रुद्र यहाँ है भी या नहीं। हर्षिता जल्दी से उन लोगों से दूर हो गई और पीछे हटते हुए हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप लोग, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के लिए आई हूँ, किसी ने यहाँ से मुझे फोन किया था और ये देखिए मैसेज भी है, मुझे मैसेज में एड्रेस बताया था यहीं का। इतना बोलते हुए हर्षिता अपना मोबाइल फोन निकालने लगी। कौन सा दोस्त, चलो आज के लिए हमें ही अपना दोस्त समझ लो। इतना बोलते हुए एक लड़के ने आगे जाकर हर्षिता की कलाई पकड़ ली और उसके पीछे खड़ा दूसरा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। व्हाट द हेल, छोड़ो मुझे, लीव मी हैंड यू बास्टर्ड इडियट, हर्षिता अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश में चिल्लाती हुई बोली। हर्षिता पूरी कोशिश करके भी उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। तभी दूसरा लड़का भी उसकी तरफ बढ़ा तो वो और जोर से चिल्लाई और हेल्प हेल्प बोलकर चिल्लाने लगी। उनमें से कुछ लोग आगे आए लेकिन फिर उन लड़कों ने गुस्से में उनकी तरफ देखा तो वे सारे लोग पीछे हो गए और कोई भी हर्षिता की मदद के लिए आगे नहीं आया। कुल मिलाकर वहां पर चार पांच ही लोग थे, लेकिन तभी उस लड़के को अपने हाथ पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ और एक आवाज भी उनके कानों में पड़ी। शायद तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया कि लड़की क्या बोल रही है, अगर उसने कहा है कि हाथ छोड़ो तो छोड़ो। इतना बोलते हुए उसने खींचकर उस लड़के का हाथ हर्षिता के हाथ से अलग किया और फिर पीछे की तरफ मोड़ दिया, जिससे कि वो लड़का बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाने लगा। हर्षिता ने उस आदमी की तरफ देखा, वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो कौन था ये हर्षिता नहीं समझ पाई, लेकिन मन ही मन वो इस वक्त उसका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। वो तुरंत ही पीछे हुई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो सारी सिचुएशन देखकर जिसमें वो खुद फंस चुकी थी। हमारे रास्ते में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इतना बोलते हुए उन दोनों लड़कों ने एक साथ उस आदमी पर हमला किया। लेकिन उस आदमी ने उन दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उन्हें उनकी जगह पर ही रोक दिया और फिर पीछे की तरफ पुश किया। उनमें से एक जमीन पर गिर गया और दूसरा कुछ कदम पीछे हुआ। उस आदमी ने उंगली दिखाते हुए कहा, मॉलेस्टेशन का केस तो लगेगा, लेकिन अगर अभी फिर से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगाऊंगा और लड़ाई के लिए उकसाने हाथापाई का भी। तुम चाहे जितने अमीर हो, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, आदमी ने एकदम तेज आवाज में धमकी देते हुए कहा। और वो अभी भी गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। हर्षिता उस आदमी के पीछे खड़ी थी। वो आदमी हर्षिता से ज्यादा लंबा था और उसकी पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक थी। उसने नीचे ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर से ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हुई थी। हर्षिता समझ नहीं पाई कि आखिर वो आदमी कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसने पूछने की भी हिम्मत नहीं की। वो तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि रुद्र तो उसे वहां कहीं भी नहीं दिखा। वो और कोई नहीं, इंस्पेक्टर जय था, जो किसी केस के सिलसिले में इस वक्त यहाँ आया हुआ था। ये सब देखकर उसने हर्षिता की मदद की, क्योंकि वो हर्षिता को पहचानता था। इससे पहले भी एक दो बार वो उसे देख चुका था, लेकिन कभी उनकी बात नहीं हुई थी, इसलिए हर्षिता को याद नहीं आ रहा था। लेकिन जय एक बहादुर और जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर था, इसलिए अगर वहां हर्षिता की जगह और कोई भी लड़की होती, वो उसकी भी इसी तरह से मदद करता। उन लोगों को अपने कांस्टेबल के हवाले करके जैसे ही जय पीछे मुड़ा, उसने देखा कि हर्षिता वहां पर नहीं थी, तो वो अपने आप से बोला, ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाए।
इतना बोलते हुए वो भी तुरंत ही वहां से बाहर निकला, लेकिन तभी उसने हर्षिता को कार में बैठकर वहां से जाते हुए देखा। वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोला और उन लड़कों को जीप में बिठाकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। दूसरी तरफ ऑफिस में करण शिविका से पहले वहां पहुंचा और वो उनकी मीटिंग की सारी तैयारी में लगा था। उनकी मीटिंग ऑफिस में नहीं, ऑफिस के पास वाले एक बहुत बड़े कैफे में होनी थी। एक पूरा फ्लोर बुक करके वहां मीटिंग अरेंज की गई थी और करण वो सारी तैयारियों में लगा हुआ था। शिविका समझ नहीं पाई कि वो सच में इतना ज्यादा बिजी है या फिर जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। शिविका ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की जब वे दोनों अकेले थे, लेकिन करण ने कुछ ना कुछ काम का बहाना बना दिया। कभी उसे फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाने लगा तो कभी उसे वेन्यू का टाइम बताने लगा। इतना बोलकर वो फिर वहां से इधर उधर हो गया या फिर कोई और करण के साथ वहां आ गया। कुछ देर बाद अंकिता वहां अंदर आई और उसने शिविका को किसी गहरे विचार में डूबे हुए देखकर कहा, मैडम हमें 2 बजे से पहले वहां पहुंचना है, क्योंकि 2 बजे की मीटिंग है और नए क्लाइंट हैं, तो हम उन्हें वेट नहीं करवा सकते। अंकिता की आवाज़ सुनकर शिविका ने नज़र उठाकर देखा और उसकी आंखों में मायूसी साफ नज़र आने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि करल उसे ये बात बताने के लिए आएगा, लेकिन अंकिता आई तो वो हाँ में सर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं बोल पाई। फिर उठकर खड़े होते हुए उसने टाइम देखा और कहा, 1 बज चुके हैं, चलो हमें निकलना चाहिए, टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे तो ठीक है, अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इतना बोलते हुए शिविका अपना मोबाइल फोन अपने कोट की जेब में रखती हुई वहां से बाहर निकली और उसके पीछे ही अंकिता। वहां से बाहर निकली अंकिता, जतिन, करण और शिविका, चारों लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे। शिविका जैसे ही कार के पास आई, करण पहले ही आगे आकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया, जिससे कि पीछे वाली सीट पर शिविका को अंकिता और जतिन के साथ बैठना पड़ा। वो एक साइड में आकर बैठ गई, उसके बगल में अंकिता और फिर दूसरी साइड पर जतिन बैठे। जतिन ने कार का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन शिविका काफ़ी नाराज़गी से करण की तरफ देख रही थी और करण ने इस बीच एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने हाथ में आईपैड पकड़े हुए था और उसमें ही कुछ देख रहा था, एकदम सीरियस होकर, जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो। करण के ऐसे बर्ताव से शिविका अब तक इरिटेट हो चुकी थी। उसने कार की खिड़की पर हाथ रखते हुए कसकर पकड़ लिया और आगे लगे हुए शीशे में करण के चेहरे को देखने लगी, लेकिन करण ने इस बीच एक बार भी अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड से नजरें नहीं हटाईं और ना ही इधर उधर किसी की भी तरफ देखा। क्रमशः